आप सुनना शुरू कर चुके हैं देश विदेश की खबरों से भरा न्यूज 18 हिंदी का पॉडकास्ट। आपका स्वागत है दोस्तों, स्वीकार करें अनुराग अन्वेषी का नमस्कार। दोस्तों, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत खुदकुशी है या हत्या, इसका खुलासा आज होने वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हो जाएगा। आज ही उन्हें भू समाधि भी दी जाएगी। AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली के आधिकारिक आवास में तोड़फोड़ हुई है। इस आरोप में हिंदू सेना के 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। सार्क के विदेश मंत्रियों की 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाली बैठक क्यों टाल दी गई, यह भी बताएंगे हम आपको आज के पॉडकास्ट में। इन खबरों के अलावा कोरोना वैक्सीन की खरीदारी, वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति, बाबुल सुप्रियो से जुड़ी खबरें भी होंगी। उत्तराखंड चुनावी मौसम का हाल भी देंगे आपको, साथ ही देश भर के मौसम का हाल भी होगा आज के पॉडकास्ट में। फिलहाल आज की पहली खबर। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम आज यानी बुधवार को होगा। 5 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा, इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह तय हो पाएगा कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की थी या हत्या कर उनके शव को फंदे से लटका दिया गया था। इस बीच आज ही अखाड़ा परिषद की बैठक भी होनी है, जिसमें तय होना है कि महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी कौन होगा। हालांकि महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में बलबीर गिरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। पोस्टमार्टम के बाद आज ही महंत नरेंद्र गिरी को मठ बागंबरी गद्दी में भू समाधि दी जाएगी। हालांकि पहले यह तय हुआ था कि महंत नरेंद्र गिरी को 23 सितंबर को समाधि दी जाएगी, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को ज़्यादा देर तक रखना उचित नहीं होगा, लिहाजा उन्हें आज ही पूरे विधि विधान के साथ समाधि दी जाएगी। सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा है कि उन्हें उनके गुरु की समाधि के बगल में नींबू के पेड़ के पास समाधि दी जाए। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को यहां अशोक रोड पर स्थित ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के आधिकारिक आवास में तोड़फोड़ करने के आरोप में हिंदू सेना के 5 सदस्यों को हिरासत में लिया। ओवैसी के आवास पर हमले की यह वारदात मंगलवार शाम को हुई है। नई दिल्ली क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त दीपक यादव ने कहा कि मामले में कथित संलिप्तता के लिए 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लोगों के कट्टरपंथ के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अगर किसी सांसद के घर पर इस तरह से हमला होता है तो इससे क्या संदेश जाता है। बताया गया है कि हमलावरों ने बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट, लैंप और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए हैं। हमले के वक्त ओवैसी बंगले पर मौजूद नहीं थे। बंगले पर मौजूद लोगों ने बताया कि हमलावर 7 या 8 की संख्या में थे। वे नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान उन लोगों ने घर के अंदर जमकर ईंटें फेंकी और तोड़फोड़ की। बॉलीवुड सिंगर से राजनेता बने बाबुल सुप्रियो भारतीय जनता पार्टी से विदा लेकर पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अब एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि वे ऐसी पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो उन्हें गर्मजोशी के साथ रखे और प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और TMC का धन्यवाद किया। कहा जा रहा है कि जुलाई में हुए कैबिनेट विस्तार में पद से हटाए जाने के बाद सुप्रियो नाराज चल रहे थे। NDTV को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जब भी मैं किसी भी टीम के लिए खेलता हूं, तो मैं मैदान पर अपना खून पसीना बहा देना चाहता हूं। जनता की सैलरी और सुविधाएं लेकर कुर्सी गर्म करना मेरे DNA में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं उस टीम के लिए खेलूंगा जो मुझे खेलने दे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी SAARC के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द कर दी गई है। ये बैठक 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाली थी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान की सरकार भी इस बैठक में शामिल हो, जिसके लिए SAARC के ज़्यादातर देश तैयार नहीं थे। ऐसे में सर्वसम्मति न होने की वजह से बैठक रद्द कर दी गई है। बता दें कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI समर्थित हक्कानी नेटवर्क के तालिबान की अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद से ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने में लगा हुआ है। ISI अफगानिस्तान को बतौर पाकिस्तानी कब्जे के क्षेत्र के रूप में चाहता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में भारत के अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। देश में कोरोना वैक्सीन के बढ़ते प्रोडक्शन के मद्देनज़र केंद्र सरकार फाइजर और मॉडर्ना जैसी फार्मा कंपनियों से वैक्सीन नहीं खरीदेगी। समाचार एजेंसी राइटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार के मुताबिक भारत में बनी वैक्सीन रखरखाव के लिहाज से ज़्यादा बेहतर है और इसकी कीमत भी कम है। सूत्रों का यह भी कहना है कि फार्मा कंपनियों की तरफ से किए गए एक और अनुरोध को सरकार ने नकार दिया है। दरअसल ये कंपनियां चाहती हैं कि अगर वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो उन्हें लीगल प्रोटेक्शन दिया जाए। भारत में किसी भी कंपनी को इस तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन इस वक्त सिर्फ अमेरिका और यूरोप में ही बन रही है। एयर मार्शल VR चौधरी को नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह 30 सितंबर को निवर्तमान वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार संभालेंगे। दिसंबर 1982 में भारतीय वायुसेना की लड़ाकू धारा में शामिल हुए चौधरी को 3,800 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के पूर्व छात्र VR चौधरी अपने करियर के दौरान फ्रंटलाइन फाइटर स्क्वाड्रन और फाइटर बेस की कमान संभाल चुके हैं। इससे पहले VR चौधरी वायुसेना मुख्यालय में वायुसेना के उप प्रमुख और पूर्वी वायु कमान में सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर के तौर पर कार्य कर चुके हैं। जुलाई में उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले चौधरी ने पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ के तौर पर काम किया है। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनावी मैदान में अक्टूबर का महीना खास हो जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार के दिग्गज यहां चुनावी मोर्चा संभालेंगे। खबर है कि अक्टूबर से भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं का दौरा उत्तराखंड में शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के दौरे तय किए जा रहे हैं। इनके चुनाव प्रचार कार्यक्रम को लेकर दिन और समय के बारे में अंतिम रूपरेखा बनाई जा रही है। उम्मीद है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 अक्टूबर को उत्तराखंड आएंगे। 16-17 अक्टूबर को अमित शाह के देहरादून और हरिद्वार दौरे की योजना है। अक्टूबर में ही PM के केदारनाथ दौरे के साथ चुनावी दौरे की भी चर्चा है। सबसे अहम दौरा गृह मंत्री अमित शाह का माना जा रहा है। वे हरिद्वार में संतों से मुलाकात कर चुनावी मूड भांपेंगे। IMD ने उत्तराखंड, पूर्वी UP, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ मध्यम से भारी बारिश होने तक के आसार हैं। मौसम विभाग ने बुधवार को दिल्ली NCR में भी खराब मौसम की चेतावनी जारी की है। दिल्ली NCR की रोहिणी, पीतमपुरा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल और औरंगाबाद में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसी तरह UP के भी कई इलाकों में आज भारी बारिश हो सकती है। ये खबरें आप न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में आज इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दे विदा। नमस्कार दोस्तों।